नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और कार्यक्रम का विषय आप जान चुके होंगे। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं, नंबर एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, 1811-7000 और 1811-7001। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं कि गौरी लंकेश की हत्या करके हत्यारों ने क्या संदेश देने की कोशिश की है, क्या ये हत्या स्वतंत्र सोच पर हमला है। हालांकि हत्या किसने की और क्यों की हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा क्यों है कि शक की जो सुई है, जो शक का दायरा है, वो हिंदुत्ववादी ताकतों की ओर है। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण और टेलीफोन लाइन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक कहें आप, वैचारिक कह लें, राकेश सिन्हा जी मौजूद हैं। पहले एक भूमिका बता देता हूं कि ऐसा ये पहला मामला नहीं है कि जब दक्षिणपंथियों की आलोचना करने वालों की हत्या हुई है। 20 अगस्त 2013 को महाराष्ट्र में नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुई, 20 फरवरी 2015 को गोविंद पानसरे की हत्या हुई, 20 अगस्त 2015 को कलबुर्गी की हत्या हुई और अब गौरी लंकेश की हत्या का मामला। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ भारत भूषण जी, ये कोई समानता देखते हैं और ये शक की सुई जिसको हम दायरा कर रहे हैं और तमाम मीडिया चैनल और ये सब बातें ही कह रहे हैं, ये हिंदुत्ववादी ताकतों की ओर क्यों इशारा जा रहा है?
देखिए, जैसा कि आपने स्वयं कहा कि अभी तक मालूम नहीं है कि इस हत्या का कारण क्या है। अगर हत्या उनकी किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण हुई है या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के कारण हुई है तो मामला कुछ और ही बनता है। और इसको दक्षिण पंथी ताकतों से जोड़ के इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि नरेंद्र धबोलकर की तरह, गोविंद पंसारे की तरह और एमएम कालबुर्गी की तरह गौरी लंकेश भी एक असहमति की आवाज़ थी हमारे लोकतंत्र में। वो दक्षिण पंथियों के खिलाफ बहुत खुल के बोलती थी और लिखती भी थी। जिस पुलिस का कहना है, जिस किस्म की पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया है, उसका जो बोर है 7.65 mm, वो उसी टाइप की पिस्तौल है जिससे अन्य हत्याएँ हुई थी। तो सर्कमस्टेंशियली लोग उसको बाकी हत्याओं की तरह देख रहे हैं और उनको लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की एक बड़ी आवाज़ गौरी लंकेश के जाने के साथ साथ समाप्त हो गई है। और क्योंकि हत्या का पैटर्न वही है कि मोटरसाइकिल पे एक आदमी आता है, हेलमेट पहन के आता है ताकि शक्ल ना दिखे, एक ही किस्म की पिस्तौल से मारता है, तो लोग उसको उससे जोड़कर देख रहे हैं।
जी, मैं इस कार्यक्रम में सीधे राकेश सिन्हा के पास जा रहा हूँ। राकेश जी, आपने ये बात आवाज़ सुनी भारत भूषण जी की, क्या ये सिर्फ परिस्थिति जन्य हिसाब से जोड़ा जा रहा है? ये बार बार ही जितनी भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये जो शक की सुई है वो हिंदुत्ववादी ताकतों की ओर क्यों जा रही है?
नहीं देखिए, शक की सुई हिंदुत्ववादी ताकतों की ओर नहीं जा रही है।
तो फिर किसकी तरफ है?
इस सुई को उधर घुमा दिया गया है। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से लगातार जो एक विरोध का वातावरण तैयार किया जा रहा है, कोई भी देश में छोटी बड़ी जघन्य घटना घट जाए, निशाना सीधे संघ, हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी होते। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। हत्या से पूर्व किसी भी निष्कर्ष को स्थापित प्रोपेगेंडा के द्वारा करना जांच को भटकाना है। वो एक पत्रकार थी, वो एक वामपंथी विचारधारा में विश्वास करने वाली थी। उनके दो ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण हैं जो उन्होंने अपनी हत्या से पहले ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने इंडिकेट किया था कि नक्सली संगठनों के बीच एकता की बात कही थी और कहा था कि हमारा बड़ा शत्रु और है, कॉमरेड्स करके उन्होंने संबोधित किया था। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा था कि हम लोग गलत पोस्ट को शेयर करते हैं जबकि हमें नहीं करना चाहिए, आपस में मतभेद बनाना चाहिए। वो नक्सलियों के बीच में एकता का प्रयास कर रही थी। और यदि इसी आधार पर बात की जाए तो शक की सुई तो वहां जाती है,
मतलब
लेकिन मैं इससे असहमत हूँ। विचारकों को, राजनीतिज्ञों को, पत्रकारों को पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका नहीं निभानी चाहिए।
मतलब ये जो मीडिया में जो चल रहा है, जो मीडिया में जिस तरह से बातें उछाली जा रही हैं, आप कह रहे हैं कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो पैटर्न दिखा रहा है, पैटर्न तो यही दिखा रहा है ना कि भाई अगर 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 मान लीजिए कि जो जितने आलोचकों के मैंने नाम बताए, ये पूरा पैटर्न वही है जो भारत भूषण जी भी कह रहे थे, चाहे वो दाभोलकर का मामला हो या फिर गौरी लंकेश का मामला हो, कलबुर्गी का मामला हो, ये सारे ऐसा में असहमति के स्वर हैं।
आप सुन लीजिए, एक मेटा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि कर्नाटका में यदि मैं मान लूं कि इनकी हत्या हिंदुत्व विचारधारा से प्रभावित लोगों ने किया, तो 2015 से 2017 तक 16 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। आपने सुना होगा 4 जुलाई को, पिछले 4 जुलाई को एक संघ के एक निर्दोष कार्यकर्ता की शाम को हत्या हो गई। तो मान लें कि इन 16 कार्यकर्ताओं की हत्या उन लोगों से प्रभावित होकर लोगों ने की है जो अपने आप को वामपंथी मानते हैं, जो अपने आप को राहुल गांधी के समर्थक, इस तरह के निष्कर्ष निकालकर सिविल सोसाइटी को डिसरप्ट किया जाता है। मेरा मानना यह है घटना घटी है, करने वाले हिंदुत्व वाले हैं कि नक्सलवादी हैं।
आप ये कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है ये सिर्फ?
नहीं, मैं कहता हूं कि पहले जांच होनी चाहिए, जांच होने से पहले निष्कर्ष निकालने की एक छोटी सी बात मैं कहकर समाप्त करता
हूं। जी
जी। पश्चिम बंगाल में 2 साल पहले आपने सुना होगा, 2 या 2.5 साल पहले एक 70 वर्षीय नन के साथ रेप हुआ था। रेप होते ही पश्चिम बंगाल के मिनिस्टर ने कहा ये हिंदुत्ववादी संगठनों ने किया था। जांच के बाद पाया गया कि बांग्लादेश से जो घुसपैठी आए उनका हाथ था। इस देश में संघ का विरोध करने की 100 बातें हो सकती हैं। जिन बातों को लेकर संघ और हिंदुत्व को आप दक्षिण पहनते कहते कटघरे में खड़ा करते हैं, यदि वे बातें होते तो संघ और हिंदुत्व बहुत पहले समाप्त हो।
राकेश जी, मैं यहाँ पर आप ही की बात का एक उदाहरण दे रहा हूँ, जो कर्नाटक के श्रृंगेरी से बीजेपी के एक विधायक है, शक की सुई आपकी ओर क्यों ना जाए।
हाँ,
जो पूर्व मंत्री जीवराज हैं, उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि कार्यक्रम में कि गौरी लंकेश ने अगर आरएसएस के खिलाफ ना लिखा होता तो आज जिंदा होती। बीजेपी विधायक का ये कहना था, गौरी लंकेश जिस तरह का लेखन कर रही थी वो बर्दाश्त के बाहर था। तो अगर भाजपा का एक मंत्री, पूर्व मंत्री अगर इस तरह की बात कर रहा है और वो मीडिया में ट्रोल भी हो रही है।
आप सुन लीजिए
जी,
राजनीति में जिसके पास भी कॉमन सेंस है,
हाँ,
वो जानता है कि इस तरह के अगर यदि बीजेपी संघ के खिलाफ लिखने के लिए किसी की हत्या की जाती, सच में की जाती, तो वो बीजेपी का विधायक ऐसा नहीं बोलता। या तो वो डिसिडेंट है, उनको मालूम है टिकट नहीं मिलेगा और अपना फ्रस्ट्रेशन, ये अच्छा अवसर मिल गया
जी
बोलने का। ये जिसके पास भी कॉमन सेंस है वो जानता है कि विधायक ऐसा नहीं बोलेगा। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, दूसरी बात आप एक और सुन लीजिए कि देखिए, जांच शुरू होने से पहले दिल्ली के प्रेस क्लब में जो भाषण होता है, वो भाषण में हिंदुत्व पर, नरेंद्र मोदी पर प्रहार होता है। जब उनके भाई ने उन बातों को इंडिकेट किया कि नक्सलियों के संबंध थे, थ्रेट आ रहे थे, तब अपने फॉल्स पोजिशन को बचाने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर जो सेलिब्रेशन हो रहा था उसको शिफ्ट कर दिया।
चलिए, मैं आपकी बात,
दो बिंदु हैं,
मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आपका तर्क मैं समझ रहा हूँ। कार्यक्रम में मैं एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ, राकेश जी आपके पास वापस लौटेंगे। जी, नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं, अपनी बात रखें आप।
हाँ, मैं राहुल कुमार झा बेतिया बिहार से बोल रहा हूँ।
हाँ राहुल जी, अपनी बात रखें।
मुझे एक ही समझ में नहीं आ रहा है कि बीबीसी भी और मीडिया के जैसा ही क्यों होते जा रही है धीरे धीरे। जब तक एक स्वतंत्र और निष्पक्ष कोई जांच नहीं हुआ तब तक किसी एक को ब्लेम क्यों किया जा रहा है?
हम तो ब्लेम कर ही नहीं रहे, हम तो चर्चा कर रहे हैं कि हम तो पैटर्न की बात कर रहे हैं और हम एक पैटर्न की बात कर रहे हैं और हम इस पैटर्न में ये इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस ट्रेंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
समझने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि आज के डेट में मीडिया अपने जो मूल काम है उससे भटक रही है। सारी मीडिया, कोई राइट विंग को सपोर्ट कर रहा है, कोई लेफ्ट विंग को सपोर्ट कर रहा है, जबकि मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। और इसी कारण से देखिए आप, दाभोलकर की हत्या हुई, गौरी शंकर की हुई, राजीवन की बिहार में हुई, आज जनता के अंदर इसके लिए उबाल क्यों नहीं आ रहा है? जो उबाल
आपकी आवाज है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, लेकिन हम आपके जो बातों का मर्म है वो समझ के, भारत भूषण जी इस पे कुछ कहेंगे आप? मतलब क्यों ऐसा मीडिया ही ये कह रहे हैं ये सारी चीजें उछाल रही है, हम तो पैटर्न की बात कर रहे हैं।
नहीं, पैटर्न भी है और मीडिया भी उछाल रहा है। मीडिया, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मीडिया आज निष्पक्ष नहीं है। अगर आप टीवी चैनल कोई खोल के देखें, अखबार देखें, तो उसमें असहमति की आवाज नहीं है, उसमें सहमति की आवाज है। जब 2014 से लेकर अब तक एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें कई कारण हो सकते हैं, इसके मालिकों के ऊपर प्रेशर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जो पत्रकार हैं वो दक्षिणपंथी बन गए हों, लेकिन आप देखेंगे क्रिटिकल जो आवाज़ होती है, असहमति की जो आवाज़ होती है डेमोक्रेसी में, उसका बहुत महत्व होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो ये कहना कि कुछ आधे लोग दक्षिणपंथी हो गए, आधे वामपंथी हो गए, ऐसा नहीं है। अधिकतर लोग आजकल सहमति की आवाज़ में आ गए हैं, एक डोमिनेंट कंसेंसस बन गया है जो दक्षिणपंथी विचारधारा का है, और अधिकतर पत्रकार उसमें शामिल हैं। जहाँ पे ये आवाज़ महत्व रखती है, जो अंग्रेजी में इसको कोई पूछते नहीं है, पॉलिटिशियन देखता है कि रीजनल लैंग्वेजेस में क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे कि जो रीजनल लैंग्वेज के पत्रकार हैं, जो हिंदुत्व के खिलाफ लिख रहे हैं या सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, उनके ऊपर अटैक होने की आशंका अधिक है।
एक बार बार तर्क ये बार बार मतलब आ रहा है, ये आसिफ शेख हैं जो कि फेसबुक पर इन्होंने टिप्पणी की, और ये मतलब दक्षिणपंथी विचारधारा के जो लोग हैं वो बार बार ये कह रहे हैं, जो केरल में आरएसएस के जो कर्मी थे, जो कर्मचारी थे या जो प्रचारक थे, उनकी हत्या हुई तो देश में कोई विरोध नहीं होता, लेकिन गौरी लंकेश की हत्या पर विरोध हो रहा है क्योंकि लोगों को मतलब समझ में आ रहा है। तो इस तर्क में कितना दम है कि भाई इनकी हत्या का तो विरोध हुआ और आरएसएस की हत्या, जब कर्म की हत्या होती है तो कोई विरोध नहीं होता।
वहाँ पे आरएसएस वालों की भी हत्या होती है और कम्युनिस्टों की भी हत्या होती है, और वो
राकेश सिन्हा भी यही तर्क दे रहे हैं,
वो दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर अटैक करती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वहाँ पे एक लार्जर इशू इन्वॉल्व नहीं है, वो पॉलिटिकल स्पेस के लिए लोकल लेवल पे एक दूसरे की हत्याएं करते हैं और बहुत ही निर्मम तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि आप अगर सरकार की नीतियों से असहमत हैं, या आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक के हिंदुवाद से असहमत हैं, आप सोचते हैं कि ये लोग धर्म के ठेकेदार हो गए हैं और लोगों को विभाजन करके अपनी राजनीति करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना एक दूसरी बात है। उस आवाज़ को वहाँ पे किसी ने आपको मारा, आपने उसको मार दिया, वो उस टाइप की चीज़ हो रही है केरला में। लेकिन यहाँ पे जो भी आपसे असहमत है, जो भी क्रिटिकल आवाज़ उठती है, जो भी हाशिए पे खड़े लोगों की आवाज़ को उठाता है, अगर उसको मार दिया जाता है, साइलेंस कर दिया जाता है, तो लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या था उनके लिखने में जिसके कारण ये सब कुछ हुआ,
आखिरकार वो ऐसा क्या लिख रही थी कि इसके इसके चलते ऐसा हो रहा
लेकिन
था।
लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये कहना कि इन्वेस्टिगेशन तक रुकना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस देश में इन्वेस्टिगेशन से कुछ पता चला है आज तक?
पिछले जिन मामलों का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें अभी तक
पंसारे को किसने मारा, धवलकर को किसने मारा,
कोई पता नहीं।
सनातन संस्था के लोगों को पकड़ा और फिर कहा कि कोई एविडेंस है नहीं, लेकिन वही सनातन संस्था जब गौरी लंकेश का मर्डर हो जाता है, स्टेटमेंट देती है कि वो तो ब्लैकमेलर थी, हम उनको नहीं जानते थे।
सोशल मीडिया पर जो भूमिका है उस पर चर्चा करेंगे। टेलीफोन पर एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ मैं। जी नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
सर जी नमस्कार।
नमस्कार, नाम बताएं।
मैं ओम नमः शिवाय रेडियो श्रोता संघ मुकाम पोस्ट सगोरी स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल।
हाँ बसंती लाल जी, अपनी बात रखें।
जैसे सोशल मीडिया पे जैसे हत्या वगैरह हो रही है, तो सरकार को इनपे तो जैसे ध्यान देना ही चाहिए। जैसे पत्रकार को मार दिया आपने, तो पत्रकार तो साफ सुथरा रहता है, जैसे अपने मीडिया जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से जैसे जहाँ बीबीसी लंदन पहुँचता वहाँ मीडिया वाले पहुँच जाते, तो साफ सुथरा तो ये हत्याएं क्यों हो रही, मैं सर से जानना चाह रहा हूँ।
जी हत्याएं क्यों हो रही हैं? राकेश जी मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, हमारे एक श्रोता ने सवाल पूछा। जी आप हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। जी, राकेश जी ये हत्याएं हो क्यों रही हैं?
देखिए पहले मैं भारत भूषण जी पर टिप्पणी कर दूं।
जी
इतनी सतही उत्तर की मुझे अपेक्षा एक पत्रकार से नहीं कि केरल में जिस मास्टर सदानंद का पैर काट दिया गया, जिस शिक्षक को छठी क्लास के बच्चों के बीच निर्मम हत्या कर दी गई, कहते हैं वो हत्या राजनीतिक स्पेस के लिए किया जा रहा है। हत्या का भी कारण आप ढूंढते हैं, हत्या का भी आप प्रकार देखते हैं। हत्या होती है किसी भी सिविल सोसाइटी में, चाहे वो वामपंथ हो, दक्षिणपंथ हो, केंद्र पत्रकार हो, या आरटीआई एक्टिविस्ट हो, या एक ईमानदार सोशल एक्टिविस्ट हो, उसकी हत्या होना समाज पर कलंक है। इस कलंक को धोने के बजाय हम यह कहते आई श्रोता ने बहुत ही बौद्धिकता के साथ साथ सवाल पूछा है कि आखिर हत्या क्यों होती है। अभी बिहार में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, उस पर तो आवाज नहीं उठाई है पत्रकारों की, वह भी तो किसी कारण।
लेकिन ये कोई तर्क नहीं है राकेश जी की, इसकी इसकी मतलब इसकी हत्या में आवाज उठी उसके में नहीं उठी, हत्या तो हत्या है ना।
नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, जांच तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप आइडियोलॉजिकल वर्डिक्ट देना बंद कर दीजिए, किसी की शक की आम जनता के मन में शक की सुई नहीं जा रही है। कुछ मुट्ठी भर पत्रकार है जो 50-60 साल से चक्रवादी राजनीति करते रह रहे हैं, वैकल्पिक राजनीतिक और वैचारिक धारा के उफान को बर्दाश्त नहीं।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है वो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित पत्रकार है।
वो जो सत्ता कांग्रेसी सत्ता के पैट्रोनेज में रहे हैं, जो उस प्रकार
वो वामपंथी पत्रकार।
मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ
जी।
सुभद्रा जोशी नाम की एक देश की बड़ी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थी, उन्होंने संघ के खिलाफ लगभग 400 डॉक्यूमेंट निकाले हैं। इतने बुरे स्तर पर संघ के खिलाफ डॉक्यूमेंट का CIA का एजेंट संघ है, संघ दंगा कराता है। सुभद्रा जोशी को तो किसी ने एक काला झंडा भी नहीं दिखाया। संघ देश में 1,60,000 सेवा का प्रोजेक्ट चलाता है। हमने अपने घरों को छोड़कर काम करने इसलिए निकले हैं कि किसी विरोध की आवाज दबाने के लिए। हमने तो इमरजेंसी में कम्युनिस्टों के साथ रहकर देश में अन्यायवाद को खत्म करने के लिए काम किया। देखिए अराजकतावाद जो लोग पैदा करते हैं, चाहे जिस
तो आप ये कह रहे हैं कि ये अराजक लोग हैं जो इस तरह की हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, इनका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। भारत जी कुछ कह रहे हैं,
देखिए ऐसा है, कोई भी
राकेश जी एक मिनट,
कोई भी हत्या जब होती है,
एक बात में जोर दूं, जी RTI एक्जिस्ट की, पिछले जब RTI एक्ट आया तो RTI लगभग 3 वर्जन RTI एक्जिस्ट की देश में हत्या हुई। देखिए इस श्रोता को मैं अभिनंदन करता हूँ जिसने कहा कि
अभी हम एक श्रोता के पास और जाएंगे, हमें मैक्सिमम श्रोताओं को शामिल करना है। मैं छोटी सी टिप्पणी ले रहा हूँ,
मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए कोई भी हत्या जब होती है उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ राकेश सिन्हा से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो है जिसने हत्या की, एक वो है वो और भी लोग हो सकते जिन्होंने हत्या की साजिश की, और चौथा वो लोग हैं जिन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें ये हत्या की जा सकती है राजनीतिक
और जस्टिफाई भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर।
मैं कह रहा हूँ कि गौरक्षक जो लिंचिंग कर रहे हैं पूरे देश में, वो उसका माहौल किसने बनाया,
राकेश जी बहस हमारी जो है भटक रही है। मैं एक श्रोता के पास जा रहा हूँ, राकेश जी एक श्रोता के पास जा रहा हूँ, श्रोताओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। जी नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं जी, माफ कीजिए आपकी आवाज नहीं आ रही है फिर। हेलो जी हाँ, नाम बताएं।
लोना खोज जालौन से
जी हाँ, जो पीछे जो रेडियो चला रखा है ना इसको बंद कर दीजिए और आवाज।
एक ही सवाल
जी,
ये पत्रकारों की हत्या शायद नेताओं के साथ मिलने से तो नहीं होती है
जी? चूंकि काफी शोर था हम इनकी आवाज सुन भी नहीं पाए, एक और श्रोता को कार्यक्रम में यहीं पर मैं शामिल कर रहा हूँ। जी नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं, अपनी बात रखें आप। हेलो जी, ये कृपया रेडियो बंद कर दीजिए, पीछे आपकी आवाज नहीं आती है इस चक्कर में।
बंद कर दिया सर
जी। हाँ नाम बताएं।
सीतामढ़ी जिला, सीतामढ़ी मोहम्मद शरीफ।
हाँ हाँ,
सीतामढ़ी जिला कोरियाई पंचायत से बोल रहे हैं
जी। नाम क्या है?
मोहम्मद शरीफ।
हाँ मोहम्मद शरीफ जी, अपनी बात रखें।
तो बात ये सर के ये जो मारा मारी हो रहा है तो ठीक नहीं हो रहा है, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए।
हाँ
मतलब मीडिया को जो मारा जा रहा है
मीडिया
पर, तो जी मीडिया को तो मतलब उसका कोई गलती नहीं होता, वो तो जो काम है वो तो करवे करेगा।
मीडिया को मारा जा रहा है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में एक और श्रोता को मैं यहीं पर शामिल कर रहा हूं लेकिन उनकी आवाज़ भी नहीं आ पा रही है। जी भारत जी, जिस मुद्दे पर थे हम वापस आ गए। एक सौरभ सिंह हैं, उन्होंने फेसबुक पर एक टिप्पणी की, उनकी हत्या स्वतंत्र सोच की हत्या नहीं, उनके वध पर इतना चिल्लाना स्वतंत्र कार्य पर हमला है।
देखिए कहने को आप कुछ भी कह सकते हैं, लोगों ने तो गंदी गंदी गालियाँ भी दी हैं उनकी मौत के बाद। स्वतंत्र कार्य पर कैसा हमला है, मैं समझा नहीं। ये
कह रहे कि अगर लंकेश की स्वतंत्रता देवी देवताओं पर गंदा लेख लिखना था तो फिर जो हुआ वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है।
अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है ये, किसी को मारना अभिव्यक्ति की आज़ादी कहना बड़ी शर्मनाक बात है। इनको सोचना चाहिए कहने से पहले कि मैं कह क्या रहा हूँ। विचारों का विरोध करना तो आप विचारों से करिए, आर्टिकल का विरोध करना है तो दूसरा आर्टिकल लिखिए, किताब का विरोध करना है दूसरी किताब लिखिए, लेकिन आप किसी को मार थोड़ी सकते हैं उसके विचारों के लिए। वो कहाँ की स्वतंत्रता हुई?
ये जो पूरा मैं सोशल मीडिया की भूमिका पर अब चर्चा करता हूँ, राकेश जी आपके पास आ रहा हूँ। ये जो सोशल मीडिया में जिस तरह से ट्रोलिंग हुई और जिस तरह से इस घटना को पर लोगों ने टीका टिप्पणी की, वो कहाँ तक जायज़ है?
देखिए सोशल मीडिया पर किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने ऐसी टिप्पणी की है? सोशल मीडिया में भारत के 125 करोड़ लोगों में कितने प्रतिशत लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं? और ये सोशल मीडिया नया आया है, इसमें कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने निम्न बौद्धिकता के आधार पर और निम्न सोच के आधार पर भड़ास निकालते हैं, उनको दक्षिण पंथी कहते तथा कथित दक्षिण पंथ को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देना, जैसे कि दांतेवाड़ा में CRPF के जवानों को मारा गया, JNU में कुछ लोगों ने जश्न मनाया, उसके आधार पर पूरे वामपंथी विचारधारा को कटघरे में खड़ा कर देना। देखिए ये जो हमारे यहाँ ध्रुवीकरण जो बाइनरी क्रिएट हो रहा है यह देश में तो डैमेज कर रहा है। इस तरह की बाइनरी ऐसे जो जो ओछे लोग हैं उनको एक इज्जत रिस्पेक्ट और लेजिटिमेसी दे रहा है, उनको वैधानिकता दे रहा है। जिनके जिनके नामों की चर्चा की हुआ वो लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, उनकी क्या सोच है, उन्होंने उनकी किताब पढ़ी नहीं पढ़ी, लेकिन हम आज उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। यदि यह बात रविशंकर प्रसाद चाहते, यह बात संघ का कोई आधिकारिक कार्यकर्ता बोलता, कोई हिंदुत्व का बोलता, या सीताराम येचुरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता दांतेवाड़ा पर साफ तौर पर कोई बयान देता कि नहीं अच्छा हुआ, तब हमें देश के जो स्थापित विचारधारा और स्थापित संगठन उनको उन ओछे फ्रिंज एलिमेंट्स के
मतलब आप ये कह रहे हैं जिस तरह सोशल मीडिया में इस तरह से टिप्पणियां हो रही है बिल्कुल भी जायज नहीं है, गलत बात है। सर घटनाओं का समय नहीं है, घटनाओं का सर मैं मुझे एक श्रोता के पास जाना है, मेरा समय बहुत खत्म हो रहा है तेजी से। जी नाम बताइए प्लीज।
अमरनाथ ठाकुर कटका दरभंगा बिहार से।
अमरनाथ जी संक्षेप में अपनी बात रख दें आप।
श्रीमान सब ही जगह पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। अभिप्राय यह है कि जो समर्थ आदमी को सब सहायक होता है, यदि पत्रकार पत्रकारिता में किसी तरह की भूल करता है तो उसका संशोधन सामाजिक स्तर से होना चाहिए, न कि उसका जवाब हत्या करना है।
सामाजिक संशोधन होना चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ जी, मैं एक टिप्पणी लूंगा।
मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं राकेश सिन्हा जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि जिन लोगों ने गौरी लंकेश की हत्या के बारे में गंदी टिप्पणियाँ की हैं वो ओछे लोग हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल ऐसे ओछे लोगों को क्यों फॉलो करता है? अभी तक क्यों नहीं कहा उन्होंने कि मैंने इनको अनफॉलो कर दिया, मैंने ब्लॉक कर दिया? रिस्पॉन्सिबल ट्विटर हैंडल है वो, कोई
वेरीफाइड
है। तो ऐसे लोग को क्यों, ओछे लोगों को भारत का प्रधानमंत्री क्यों फॉलो करता है मुझे
और दूसरी बात इसका संदेश भी बहुत अच्छा नहीं जाता है। राकेश सिन्हा जी आखिरी टिप्पणी ले रहा हूं मैं आपकी।
देखिए भारतीय प्रधानमंत्री भविष्य पुराण के लेखक नहीं है कि वो जानते हैं कि जिस व्यक्ति को मैंने आज फॉलो किया जो अच्छी बात लिख रहा है कल वो बलात्कारी
अनफॉलो कर देना।
वो मुझे आपको जानकारी है कि अनफॉलो नहीं हुआ है?
नहीं तो आपको है, आपको है तो आप हमें बता दीजिए, आप बता दीजिए किस किस को उन्होंने अनफॉलो कर दिया पिछले पांच दिनों में।
मेरा समय मेरे पास बहुत रचनात्मक समय काम है, मैं कौन किसको फॉलो करता क्या करता है उसने,
लेकिन इसका संदेश खराब जाता है।
देखिए संदेश आपके लिए खा जाता है, मुझे फॉलो करने से कोई इतना प्रधानमंत्री तो एंडोर्स करते हैं, फॉलो करना कोई एंडोर्स करना नहीं होता है। और भारत के प्रधानमंत्री के
लेकिन अनफॉलो करना ये जरूर दिखाता है कि प्रधानमंत्री उस आदमी से नाराज है जो गौरी लंकेश को जिसने कुतिया कहा
उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। राकेश जी ने कहा और इसके लिए वाकई नियम कानूनों की कुछ जरूरत है जो कि सोशल मीडिया पर।
पहले तो वॉलंटरली प्राइम मिनिस्टर को इनको सबको अनफॉलो करना चाहिए और कहना चाहिए कि ऐसे लोगों को मैं अनफॉलो कर रहा हूँ।
जी खैर मेरे पास समय वाकई ख़त्म हो चला है। राकेश जी कुल मिलाकर इसकी नकेल कसने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई इस तरह के भ्रामक तथ्य ना आए और गड़बड़ियां ना फैलें?
आज मेरे ट्विटर हैंडल को हैक करके रवीश कुमार जी को इतनी गंदी गाली दी गई, मुझे तो एक मिनट में मालूम हुआ, फिर मैंने थ्रेट किया और मैं कल FIR लॉन्च करने जा रहा हूँ मंडे को, आज मैं कहीं व्यस्त था। देखिए हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, ऐसे लोग हैं, मैं इसके लिए पूरे वामपंथी विचारधारा को दोषी ज्यादा हूँ, विक्टिम खुद की नैरेटिव दे, ये ठीक नहीं है। कुछ होता है उसको दिन इन देर रोकना चाहिए, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि
तो, भारत तो सामूहिक जिम्मेदारी के साथ इस तरह इन सब कामों पर रोक लगनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सिन्हा जी आपका अपनी बात रखने के लिए और बहुत विस्तार से आपने बातें रखी। भारत भूषण जी आखिरी टिप्पणी मैं आपके लिए।
मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल सोशल मीडिया का नहीं है, सवाल ये है कि क्या ऐसे पत्रकारों का जो बेबाक हैं, जो असहमति का स्वर बनते हैं हमारे लोकतंत्र में, उनको इस समाज में सुरक्षित महसूस कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री को कम से कम कुछ बोलना तो चाहिए इसके ऊपर, अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? उनको कहना चाहिए कि देखिए इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, जो चीज़ राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं यही प्रधानमंत्री कह दें कि ये ओछे लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसा कहा, गौरी लंकेश की हत्या नहीं होनी चाहिए थी, हम इसकी तह तक जाएंगे और इस समाज में सारे लोग सुरक्षित हैं, वो पत्रकार भी सुरक्षित हैं जो उनके खिलाफ लिखते हैं और वो तो हैं ही जो उनके पक्ष में दिन प्रतिदिन अपनी विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया भारत भूषण जी। कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। सुबह नमस्कार भारत कार्यक्रम के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। मोहनलाल शर्मा को राजेश चौहान के साथ विदा दें, नमस्कार।